أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان الان آج فروری 1977 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی آیت 53 سے ہو رہا ہے. 1-6/5-3. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے درس میں اور اس کے آخری لمحات میں یہ عرض کیا تھا کہ اب ہمارے سامنے ایک ایسی آیت آتی ہے جو عنوان بنتی ہے اس ماضی کا جو بالخصوص ہمارے اس دور میں بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے, اور یہ موضوع ہے معاشی نظام یا معاشی مسئلہ. میں نے بتایا تھا کہ اس معاشی نظریہ کی جو اس دور میں عام ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد مارکس کے تصور پر ہے, اور اسے عام طور پر کمیونزم کہا جاتا ہے. اس نے کہا یہ تھا کہ یہ جتنی مصیبتیں پریشانیاں ملک میں دنیا میں نظر آ رہی ہیں یہ ضروریات زندگی یا رزق کی غلط تقسیم کی بنیادوں پر استوار ہوتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, اس مسئلے کو اگر صحیح طور پر حل کر دیا جائے تو یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کسی کا وہ طبقاتی امتیاز بھی کہتا ہے, کسی کا نام اس کے نزدیک نظام سرمایہ داری کے خلاف ایک دوسرے نظام کا محاذ ہے جسے جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ کمیونزم کہتے ہیں. یہ جنگ ہے, یہ ٹکراؤ ہے ان دو نظاموں کے درمیان, دو نظریات کے درمیان, طبقات کے درمیان. اور اس نے کہا یہ کہ اگر اس مسئلے کا صحیح حل دریافت کیا جائے اور اسے رائج کیا جائے تو یہ الجھنیں, یہ تصادمات, یہ تزاحمات, یہ ٹکراؤ, یہ ختم ہو جائیں گے اور امن قائم ہو جائے. جو کچھ اس نے لکھا اور کہا وہ تو بڑا یقین ہے. بنیادی نظریہ اس کا یہ ہے کہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی اینڈ ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ, ہر شخص سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیا جائے اور اس کی ضروریات کے مطابق اسے دیا جائے. نظریہ بڑا خوشگوار, اطمینان بخش, پسندیدہ. لیکن اس کے بعد اس نے یہ کہا, یہ ساری ڈسکشن اس کی پارٹی کے اندر ہوئی, یہ بھی ڈیٹیلز میں ہوئی. اس سے کہا گیا کہ اب اس کو ہم انٹروڈیوس کریں, اس کو رائج کریں, اس کو رائج کرنے کا طریق کیا ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ یہ نظریہ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ کسی پر انسانیت کی خلاف کا دار و مدار ہے, لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ عمل میں کیسے آ سکتا ہے. یعنی یہ بات کہ ایک شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق صلاحیت, کیپیسٹی کے بعد صلاحیت, استعداد, استطاعت, کچھ بھی کہہ لیجیے, اس کے مطابق لوگ کام کرے, اس کام کا جو محصول ہو جسے وہ پیداوار کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کی ضروریات سے کہیں زیادہ فاصلہ ہو, اسے دیا جائے اس میں سے اتنا ہی جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو, اس سے جتنا زائد ہے وہ اس سے لے لیا جائے, چھین لیا جائے. تو اس نے کہا کہ اس کے بعد وہ اتنا کام ہی کیوں کرے گا جو اس سے زائد پیداوار ہو, وہ اتنا ہی کام کرے گا جس سے اس کی ضروریات پوری ہونی ہے. جب اسے اس سے زیادہ کچھ ملنا ہی نہیں تو وہ جان مار کا کام کیوں کرے گا. اس لیے اس نے یہ کہا کہ یہ ہے وہ دقت جس کی بنا پر یہ نظریہ جو ہے میرے نزدیک हल यही है इंसानों की इस परेशानी का, लेकिन उसके अमलन उसको राज करने के रास्ते में रुकावट ये पेश आती है कि वो इंसेंटिव वो जज्बा मुहर्रता क्या हो जिसकी बिना पर एक शख्स जान मार कर काम करे और अपनी जरूरत के एतबार से उसमें से लिया जाए और बाकी सारा उससे ले लिया जाए दूसरों को दिया जाए वो क्यों काम करे। तो उसने कहा ये था कि ये क्यों जो है इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसे अमलन लायक करने का कोई रास्ता नहीं बता सकता। दर्श दीन तनजुल इतना ही अभी किया जा सकता है, ये जिसे आप सोशलिज्म या इस तरह की लोग कहते हैं ये कम्युनिज्म से अलग चीज है, ये कहिए कि इसका इब्तदाई स्टेज है, या यूं कहिए कि जहां जाके मार्क्स आजिज आ गया था उसको अमल में नाफिज करने के लिए उसको वो पीछे हटा और उसने कहा यह कि इब्तदा तो यूं किया जाए कि जितने भी ये वसायले पैदावार हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो जमीन की शक्ल में हो कारखानों की शक्ल में हो, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इंफरादी मिल्कियत में न रहे, वो कौम की मिल्कियत में ले लिए जाए, नेशनलाइज जिसे हम आज कहते हैं, और उसके बाद हर शख्स को काम मुहैया किया जाए, और काम मुहैया करने के बाद उसको इसकी वेजिंग दी जाए, मजदूरी दी जाए मजदूर को। उसने कहा कि ये है वो प्रोग्राम वो अमली निजाम जिसे हम राइड कर सकते हैं, वेजिंग का निजाम रिटायरिंग तो इस नीज नहीं, मजदूर की इजरत दी जाए। तो उसने कहा कि इसे तो हम महसूस कर सकते हैं, ये जो है ना बरसदीर तरजुल महसूस किया गया इसे सोशलिज्म कहा जाता है, ये कम्युनिज्म से उसने कहा था कि ये पहला कदम है। बहरहाल आप देख लीजिए दोनों में कितना फर्क है, ये है जिसे इतराजुल कहा जाता है सोशलिज्म कहा जाता है। ये मैंने जैसा अर्ज किया था और ये मैंने नहीं कहा, खुद उसकी पार्टी के अंदर ये इतराज हुआ कि ये तो वो कैपिटलिज्म की ही एक नया सी बदली हुई शक्ल है, ज्यादा से ज्यादा आप इसे वेलफेयर कह सकते हैं। असल सवाल तो ये है कि मजदूर की मेहनत का मुआवजा मुतय्यन करने का असूल और मेयार क्या हो, यानी एक लेबर एक मजदूर वो भी जिंदर काम करे, एक राज मेमार वो भी उसके साथ काम करे दिन भर, उनके ऊपर सुपरविजन के लिए एक इंजीनियर भी काम करे दिन पर, मेमार को 5 रुपए या 3 रुपए उस जमाने में तो 2 रुपए 1 रुपए मिला करता था, मेमार को मैक्सिमम 10 रुपए, इंजीनियर को 60 रुपए। उन्होंने कहा कि ये किस मेयार के मुताबिक मुतय्यन किया जाए। उन्होंने कहा कैपिटलिज्म भी तो यही करता है, वो एक फर्द होता है कारखाने का मालिक, वो ये कहता है कि मेरे कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को मसलन 6 रुपया महीना मिलेगा, स्किल्ड लेबर उसके ऊपर आएगी उनको हम 200 रुपया देंगे, इंजीनियर को हम 1000 रुपया देंगे। उसने कहा बहन ही यही कुछ तुम करते हो अपने हैं, इसलिए ऐसी होती फर्क फर्क इतना है कि उसमें एक मालिक होता है कारखाने का, इसमें तुमने उसकी जगह एक तो मालिक मुकर कर दिया, जहाँ वो एक मालिक मुतय्यन करता था वो जो जहाँ स्टेट ने मुतय्यन कर दी वो जो, तो जहाँ तक उस मजदूर का ताल्लुक है इन दोनों में फर्क क्या है। ये थे उनके एतराजात और ये इस हद तक बात बढ़ी कि वो इसकी बुनियाद का साथ छोड़कर अलग हो गए, और उसके बाद जब अमलन महसूस किया है लंदन में आकर तो वो सोशलिज्म महसूस किया। दुनिया में कम्युनिज्म कहीं नाफिस नहीं, आज भी कम्युनिस्ट जो है वो यही कहता है जो मार्क्स ने कहा था कि हमें ये मालूम नहीं कि उसके लिए जज्बा मुहर्रका क्या हो, क्यों जान मार कर एक शख्स काम करे जैसे उसे पता है कि मैं जो काम करूंगा उसके मासूम में से मुझे इतना थोड़ा सा मिलेगा बाकी नहीं मुझे मिलेगा, तो कहते हमारे पास भी इसका हल नहीं है। और इसीलिए सोशलिज्म ही नाफिस है अगर कि उसकी भी ये कैफियत है कि वो रशिया में तो करीब करीब ट्रेड हो चुका है, चाइना ने अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और उसकी वजह सारी ये है कि ये निजाम जो है ये वही है जो कैपिटलिज्म का निजाम है। इसमें तो सिर्फ मॉडल बदलता है, फर्द की बजाय एक स्टेट का एब्सोल्यूट आइडिया आप लोगों ने रख लिया, वो होता है एक ग्रुप होता है शायद इकतदार लोगों का, और कोई फर्क नहीं है इनमें, इसलिए ये नहीं चल सकता। वहां जब तक लेनिन बरकर इकतदार रहा उसकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी थी कि उससे वाबस्तगी की बुनियाद पर वो लोग जो निजाम चलाते रहे, उनके मरने के बाद ऐसी पर्सनैलिटी वहां कोई नहीं रही। जो पर्सनैलिटी कई था जिसकी बुनियाद पर जो निजाम चला, उसके बाद चाइना में माओ तंग है उसके साथी जो है एक आध, उनकी पर्सनैलिटी है जिसकी बुनियाद पर ये कुछ होता। माओ ने ये कहा, माओ ने ये कहा, बात जो कही गई है वो उसने जो मैंने अर्ज किया था है वही हल, वो क्यों का जवाब उसे नहीं मिलता। ये हल मार्क्स के जहन की इस तरह नहीं था, ये हल 1400 साल पेश कर कुरान करीम ने पेश किया था और इसे नबियों संबंध वाला उस संबंध में अमन करके दिखा दिया। आपको मालूम है कि जब वजायत मुकर हुए हैं, वजायत के माने ये थे कि पूरी की पूरी उम्मत पूरी टाइम काम करती थी जो काम प्रोग्राम के मुताबिक दिया जाता था, और हर एक जो इतना दिया जाता था स्टेट की तरफ से, इसे वजायत का नाम दिया गया। ये जो दिया गया था उसका मेयार क्या था, उसका मेयार था हर फर्द की जरूरियात, ये वो अमलन किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हत्या जो मैदान जंग में जो मारे जमीनों पर आता है वो तो सारी फौज का मुकरता होता है, उसमें भी तकसीम का जो असूल था कि जो मुजरब होता था शादी शुदा नहीं होता था उसका हिस्सा कम होता था, और शादी शुदा और बच्चों वाले बच्चों बाल बच्चों वाला जो था उसका उसमें भी हिस्सा उसकी जरूरत के मुताबिक होता था। वजायर मुतैन उस असूल पर किए गए थे कि सारी उम्र के अफराद काम करें उस प्रोग्राम के मुताबिक जो वो निजाम चाक आउट करे, और हर एक की जरूरियात के मुताबिक इसे वजीफा दिया जाए, स्टेट की तरफ से ये चीज उसको दी जाए। अब सवाल ये था कि क्यों का जवाब क्या वहां दिया गया, यही बुनियाद है सारे मसले। और कुरान में वो तो क्यों के बगैर कोई हुक्म ही नहीं देता, वो क्यों जो था इसे उसने बताया है, और ये है वो चीज जो हम ये कहता है, ये जो टाइम भी इस कुरान के ऊपर आ गई और उसने उस क्यों का जवाब उसके पार पार इसके मुतल्लिक एक मुआशरा में तशक्कुल किया, ये दुनिया की मुसीबतों का हर कुछ काम तो आपके होगा। वो जो इस क्यों का जवाब देते जीवन में तशक्कुल करेगी, बात वही है जो मैंने अर्ज किया, और बात ये भी मैंने कहा कि इस दौर में तो दारा मार्क्स के रेफरेंस से वो बात आगे चली है, वो तो कुरान के रेफरेंस से आगे बात चलती है। बुनियाद है उस चीज की, इस ईमान पर, इन चार लफ्जों से जहां से ये सूरह नहल की त्रिपुणी आयत शुरू होती है, ये अभिमान सारा बुनियादी नुस्खा इसके अंदर चार लफ्ज है सारे। मेहनत के माने होते हैं हर किस्म की खुशगवारियां, सहूलत का सामान, रिजक का सामान, जरूरियात जिंदगी, जितनी चीजें आप कह सकते हैं, इसमें सहूलतें भी होती हैं, सरफराजियां भी होती हैं, अजीब जाने लफ्ज अरबों के हैं ये। तो जिस कदर भी जिंदगी के लिए इन जरूरियात है इंसान की नशो नमा की, नशो नमा के लिए जो भी जरूरियात हैं, वो बिला मुल्दे मुआवजा खुदा की तरफ से मिली हुई। फनान रिज्क हासिल होता है नजान शुक्र से, जमीन पानी हवा हरारत रोशनी कहता है कि इनमें से कोई चीज भी किसी की जाति मिलकियत नहीं है, कानून अल्लाह, ये तो खुदा की तरफ से है। आ रहा इंसान कहता है कि इसके अंदर भी जितनी सलाहियतें हैं वो सलाहियतें भी ना ये इसने कहीं से खरीदी है ना ये कहीं से इसने मांग के दी है, ये तो इसकी है ही नहीं, ये भी तो खुदाई की तरफ से इंसान को मिली है। इंसान का जहन, उसके काम करने की सलाहियतें, उसकी सोच, कोई चीजें अक्वायर या अचीव करने की इस्तेदाद, ये जितनी इस्तेदाद एक फर्द को हासिल है, बेसिकली बुनियादी तौर पर वो कहां से इसमें नहीं है, वो तो इंसानी बच्चों को पैदाइश के साथ मिलती है। उसमें डेवलपमेंट, उसमें ग्रोथ, उसमें तरक्की, ये ठीक है कि जो बाहर का निजाम है उसकी रूह से होती है। बुनियादी तौर पर तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो कहता है सामने अल्लाह, ये तो उसकी तरफ से मिली हुई है। ये जहन जो हमारा इतना सोच रहा है, कहां से हासिल हुआ है हम, ये फिक्र हमारी का सरचश्मा जो है कहां से लिया है हमने इसे, यही तो है जहां आगे फर्क पड़ता है एक फर्क दूसरे फर्क में। ये जिसे आप सलाहियतें कहते हैं काम करने की, यही तो बुनियाद है ना इसके फर्क की, तो वो ज्यादा इंटरनेट का मालिक है, उसकी सोच बहुत ऊंची है, ये जो है ये लोअर लेवल के ऊपर है। मैं इस सवाल में नहीं जाता कि ये जो तफावत है इस तफावत की बुनियाद क्या है, लेकिन यही है ना फर्क जो आप कहते हैं। इसके बाद अगली चीज जो है वो तो हासिल करने की चीज है ना, इंजीनियर ने हमने इंजीनियरिंग जो था इलम हासिल किया, उससे उससे इन चीजों की वाकफियत हुई, मजदूर ने हासिल नहीं ये किया। बात आगे फिर वहीं करी जाती है सरमायादारी की। इंजीनियर का बाप अमीर आदमी था, वो अपने बेटे को भेज सका बलाव, मजदूर का बाप गरीब आदमी था, ये न तालीम दिला सका न उसको बलाव भेज सका, ये इंजीनियर नहीं बन सका, ये भी इसका कसूर नहीं है, ये भी उसकी कारीगरी नहीं है। ये बात और तेज फैल जाती है, लेकिन कुरान ये कहता है कि वो जो मंदा है, सर चश्मा है सलाहियतों का, जो इंसानी फिक्र और दिमाग और ये सलाहियत है आप कहते हैं, ये जो बेसिकली इसके अंदर सलाहियत है इस चीज को असल करने की, ये कहां से ली है उसकी। मैंने आज ये है मेहनत इंसान भाव, ये है ये पहली चीज सामने ना। यही से एक बात मैं वाजिया करता जाऊँ, ये क्लीनर से सवाल कीजिए तो वो कहते हैं कि साहब ये तो धारण आपका ईमान है ना, फेथ जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये तो फेथ के ऊपर एक बात लगनी आपने कर दी, तो मैंने याद आपने फेथ पर रखी, हम तो नहीं थे मान समझा यूं जाता है कि जाते ही ये फेथ नजर परस्तों की बात है, उनके यहां नहीं है, जरा वायर कीजिए। एक मजहब परस्त का या एक मुसलमान का फेथ है कि खुदा है, खुदा की तरफ से यही मिली, यही ने ये अखबार दी, ये असूल दिए, ये कवानीन दिए, जिन्हें हम ये तस्लीम करते हैं, और इनको तस्लीम करने के बाद हम एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक उम्मत के फर्द बनते हैं, ये बुनियाद जो है उसे फेथ कहते हैं। मैं पूछता ये हूँ कि कम्युनिस्ट बनने के लिए भी इस फेथ की जरूरत है या नहीं, फेथ और फेथ में फर्क है। उनके यहाँ की बुनियाद ये है कि खुदा कोई नहीं, वही नहीं है, मुश्किल अखबार कोई नहीं, मुश्किल कवानीन कोई नहीं है, ये नहीं है, ये जो मानना है तो ये नहीं है, ये फेथ नहीं है। इतना मुतशद्दद थे कि हमारे यहाँ तो इस चोट की अब कोई कीमत भी नहीं रही, कोई अहमियत ही नहीं रही, मुसलमान कहलवा दीजिए, उसके बाद खुदा का इनकार कीजिए, वही का इनकार कीजिए, सीधों का इकतदार इनकार कीजिए, रसालत का इनकार कीजिए, मुसलमान कहलाते रहिए, कोई नहीं पूछता, उनसे कहिए अवरत जरा रशिया में जाइए और कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग कीजिए और वहाँ जाके कहिए कि साहब मैं कम्युनिस्ट तो हूँ लेकिन मैं खुदा को मानता हूँ, वही को मानता हूँ। पूछिए दूसरे दिन वहाँ रहने दिया जाएगा आपको? कोई कम्युनिस्ट पार्टी आपको अपना मेंबर नहीं बनाएगी अगर आपने ये कह दिया कि साहब मैं खुदा को मानता हूँ। जिस तरह अगर आप कह दें कि मैं खुदा को नहीं मानता तो कुरान की रूह से आप मुसलमान ग्रुप के मेंबर नहीं हो सकते। इसे कहते हैं ना आर्टिकल ऑफ फेथ। कम्युनिस्ट ग्रुप के अंदर आप जाने के लिए या जाने के बाद ये कह दीजिए कि मैं खुदा को मानता हूँ, आप उस ग्रुप के मेंबर ही नहीं जा सकते। कोई खुदा को मानने वाला कम्युनिस्ट हो नहीं सकता, वही का मानने वाला कम्युनिस्ट हो नहीं सकता। और ये वो चीज है जो वो कहती है उसी का आर्टिकल ऑफ फेथ है। जी कम्युनिस्ट का आर्टिकल ऑफ फेथ है ये। उनका जो अब वो लफ्ज बना रहे हैं ईमान लाल, ये कुरान ने जो कहा है ताहूत पे भी तो ये ईमान कहता है, ये ताहूत पे ईमान है। दूसरी तरफ वो खुदा पे ईमान है, अल्लाह पे ईमान है। ईमान है ना कि जो से तो दोनों व्यक्ता में जाते हैं ना, जहाँ तक खेत का ताल्लुक है इस चीज पर ईमान है। यहाँ करा हुआ बात समझ लिया आपने क्या मैं कह रहा हूँ? खेत तो वहां भी ये कहिएगा उनसे तो ठीक है, आप वो खेत नहीं रखते जिन चीजों के हम खेत रखते हैं, खेत तो तुम्हारा भी है। लिहाजा यहाँ कभी हमें पहले व्यापक एटीट्यूड नहीं इख्तियार करना चाहिए, मायूसी अंदाज नहीं होना चाहिए कि तो ये आशा ठीक है जी हम तो मजो फरस्त है जी हम तो मानेंगे जी अब क्या करें, मुसलमान के घर में तो पैदा होगा मुसीबत है हमारे लिए। तो मुसीबत क्या है? उनसे कहिए तो ठीक है मैं ये खेत छोड़ना चाहता हूँ, मैं कमीने छोड़ना चाहता हूँ, बताइए मुझे पहले बुनियादी तौर पर बताइए कि मुझे क्या मानना होगा। मानना होगा कम्युनिस्ट होने के लिए बुनियादी तौर पर उनके यहाँ लिखा है ये कि ये मानना होगा। ये भी अगर मैं ये ना मानू तो कहते तुम कम्युनिस्ट नहीं हो सकते। तो साहब ये मानना होगा जो कि आप कहते हैं वही तो हम कहते हैं कि आपको ये मानना होगा। क्या मानना होगा? मानना होगा कि वमाद तुम निम्ने न तुम खाने न, ये मानना होगा कि जितनी कैपेसिटी भी काम करने की सलाहियतें बुनियादी जो हैं मेरी नहीं है। मीन ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं वसायल पैदावार मेरे तेरे किसी फर्द के नहीं है। खाने ये मेरा ईमान है, तुम्हारा ईमान है ना तो इससे फर्द की मिल्कियत नहीं पेट की मिल्कियत है ना। कम्युनिस्ट का ईमान ये, मेरा ईमान ये है कि यहाँ फर्द भी नहीं पेट भी कोई चाह नहीं, ये खुदा की मिल्कियत है। तुमसे कहा मैंने इससे क्या है कि ये तो शायद एक एब्स्ट्रैक्ट की चीज है, नजरी सी चीज है, के साथ नजरी सी चीज तो नहीं है। पेट की मिल्कियत के मैंने ये है ना कि जो भी वो कवानीन बनाए किस मिल्कियत से फायदा उठाने के लिए उसके हक ऐसे भाई ये कवानीन बनाने का, क्योंकि वो उसकी मिल्कियत है। और हम ये कहते हैं कि शायद वो खुदा की मिल्कियत है, इसलिए उसके हक ऐसे है कि इस मिल्कियत से फायदा उठाने के लिए जो कवानीन का है बना, इन्हीं कवानीन को हम वही कहते हैं। इस देश के कवानीन जो है उनका मानना आपके नजदीक वो तो कोई देश नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, निहायत महत्वपूर्ण बात है। और अगर हम जो कहें तो साहब जिसे आप पेट कहते हैं हम उसकी जगह खुदा को मालिक करार देते हैं, स्टेट को जो अख्तियार हासिल है हम सबके यहाँ खुदा को अख्तियार हासिल है, स्टेट के अख्तियार तुम्हारे यहाँ के विवादों के कवानीन में आते हैं, खुदा के अख्तियार हमारे मौजूद खुदा की किताब में आते हैं। बताओ तो सही, बेसिकली दोनों में फर्क क्या है? हमें न तुम करते हो और आप बड़े रैशनलिस्ट बनते हो, हमारे यहाँ बात समझिए नहीं, इसीलिए कुछ झेपे हुए थे शर्मिंदा हुए हुए थे कि हाँ साहब ठीक है जी हम ये मानते हैं जी ठीक है जी ये मान दो ये बेचिन से कहो तो फर्क क्या है तुम्हारे मानने हमारे मानने में? बात अलग है कि तुम क्या मानते हो हम क्या मानते हैं। मैंने बताया आपको वो तो कदम के ऊपर आप देखेंगे तो वो वही कुछ वो करते हैं। वो आज जो है तुम जहाँ तक सिर्फ जाते हो कि वसायल पैदावार पर मिल्कियत पेड़ की है, चलिए साहब पेड़ को जो अख्तियार है वो कानून बनाया बहुत अच्छा साहब। तो ये जो ये नजरिया और ये ईमान रखने के बावजूद आप वो जो खुद तुम्हारे यहाँ के नार्थ का दिया हुआ बुनियादी असूल है उसे तो काबिल अमल नहीं करार आप देते हैं। ये सारा कुछ मानने के बावजूद आप कहते हैं कि उसको हम अमल नहीं कर सकते क्योंकि जज्बा मुहर्रिका हमारे पास नहीं है, और हम इतना मानने के बाद अगला कदम ये देते हैं। जज्बा मुहर्रिका तो जहां से पैदा हुआ जो ठीक है, खुदा ने ये कहा वाला और वो जिंदा भी है, वसायल पैदावार खुदा के हैं, वो तो बाहर तक की दुनिया का उसने ये मामला किया। ये जो है जमाने तुम बनने न पेंसान अल्लाह, मेरे अंदर जो सलाहियतें हैं इतनी कि मैं वैद के मुकाबले में ज्यादा पैदा कर सकता हूँ, मेरी ये वैद सलाहियत जो है वो भी मेरी नहीं है खुदा की अदा करता है, जिस तरह जमीन मेरी नहीं है खुदा की अदा करता है। ये है ईमान हमारा, तुम्हारा ईमान वहां तक खत्म हो गया कि स्टेट की मिल्कियत नहीं आया, तुमने खुद एतराज किया कि वो तो कैपिटलिज्म की एक बदली हुई जरा शक्ल है। हमारा ईमान जो है आप देखिए तो जहां न कैपिटलिज्म रहता है ना तुम्हारे यहाँ से सोशलिज्म रहती है, जो उसके बाद आगे चली जाती है बात। जमीन भी खुदा की मेरे अंदर जमीन से ज्यादा करने की सलाहियतें जो दी हुई है वो भी उसकी दी हुई है, न उसका मालिक हूँ न इनका मालिक हूँ। इसमें मेरा क्या है अजीवा ने मान अफसोस भी है कि न तो आप आधार के सामने कुरान के नुस्खे होते हैं न ही आप इनके कुछ नोट रखते हैं। कुछ दिए चले जाइए अगर काम की कुछ बातें आ जाती हैं, पता है जिंदगी कितनी है, दोबारा ये वक्त आने हैं जो नहीं आने, ये सलाहियतें देखी कभी ये मेरी नहीं, ये वसायल पैदावार ये मेरे नहीं है। दर्द का क्या है, मैं इस वसायल पैदावार के खुदा की दी हुई सलाहियतों के मुताबिक जाकर काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, दूसरा नहीं करता, ये है फर्क। और इसने कहा है कि लैसा दिल इंसान है इल्ला मा सआ, फर्क सिर्फ उसका मालिक है जिसकी जो वो मेहनत करता है अपनी, ये उसकी है। ये चाहते हो ना तुम से अदल हो, अदल का तकाजा है कि लैसा दिल इंसान है इल्ला मा सआ, सिर्फ उसकी जो लेबर है मेहनत है उसकी, ये है उस फर्क की, और इसी का वो मालिक अपने आप को कह सकता है। जस्टिस का जो तकाजा है कौन आएगा राइट बता रहे हक, इससे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते, बात बड़ी साफ है। इस ईमान के बाद तो वो जमीन भी वो खुदा की थी, उसने ज्यादा पैदा करने की सलाहियतें जो मुझे हैं ये भी उसकी दी हुई है, बस मेरा उसके अंदर सिर्फ इतना ही रह जाता है। लैसा जो इंसान साहब ये है आपका लीजिए एज अ प्राइड तो यही ले सकते, लेकिन उसने कहा है कि हमने अदल के साथ एहसान का भी हुक्म दिया, हम सिर्फ अदल नहीं करना चाहते। और ये एहसान भी है कि मना ने दादा तुम नल अर्द इला अदल्ला और उसके हाँ तुम्हारी जरूरियात जिंदगी पूरा करना मुहैया करना ये हमारा फरीजा है। कहो अदल पे रहना चाहते हो या हमारे एहसान पे आना चाहते हो, ये हमारे जिम्मे। ये वो जो मास आता था हवाला उसका है 63/39, ये जो कहा है कि इस रुए जमीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं है कि जिसकी रिजक की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना हो 11/6। देखते हैं आप कैसे चिड़िया मिलती चली जाती है, कैसा कौन सा निजाम चाहते हो, पहले ये निजाम चाहते हो या वो ही चाहती होती है। ठीक है, जितनी तुम मेहनत करते हो उससे अगर तुम्हारे बाल बच्चों का पेट ना भरे तो फिर हमारे जिम्मे तो कोई दोष नहीं है जिसे कहते, और हम आगे बढ़ते हैं उससे, हम तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की रिजल्ट के जिम्मेदार हम देंगे। अब उसके बाद अगली चीज भी आगे तो फिर सीधी सी बात है, तो जो काम तुम्हारे जिम्मे लगाया जाए वो काम तुम करो, सलाहियतें जो तुम्हें हमने दी है उन सलाहियतों को उस काम के पूरा करने में सर्व करो, तो करते चलोगे। और तुम्हारा इतना ही काम है, उसके बाद की फिक्र तो है ही नहीं तुम्हारी। लोग गम मिला उसे गमे जाना बना दिया, ये सब कुछ करते रहो। घर आओगे तुम्हारे घर में सब कुछ मौजूद पाओगे तुम, जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जरूरियात के लिए जरूरी है वो मौजूद पाओगे। जो मौजूद पाए फिर उसके बाद इसको क्या जरूरत है ये सर धर्म अपने जिम्मे ले, तो मैंने क्या काम किया, क्या मैंने पीली, क्या पैदा हुआ, कहाँ रखू, किसे देखू, अरे जरूरी भी नहीं। ये काम मुझे दिया मैं कर दिया, मैंने करके आ गया घर में जरूरी आ, तो जिंदगी मेरी पड़ी हुई है सर, चलिए इंसेंटिव मिल गया ये नहीं। और अगली बात उसने फिर और कह दी कि इस बात के फिर ईमान रखो कि ये जरूरियात जिंदगी तुम्हारी कभी जिस्म की जरूरियात ही नहीं, तुम्हारे अंदर एक और चीज भी है कि जिसे इंसान की जात कहा जाता है। इंसान की जात की नशो नुमा भी जरूरी है, जिस्म की नशो नुमा से कहीं ज्यादा जरूरी। और उस जात की दसवें नमा का असूल ये याद रखो, इसको ईमान लाओ कि मेरे जिस्म की नशो नुमा हर उस चीज से होती है जो मैं खाता हूँ, जो मैं लेता हूँ। जात की नशो नुमा हर उस चीज से होती है जो मैं दूसरे की जरूरत के लिए देता हूँ। अब जितना ज्यादा से ज्यादा दूसरे की जरूरत के लिए दे दोगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जात की नशो नुमा हो जाएगी। तुम्हारी जरूरियात के मुताबिक तो हमने इंतजाम कर दिया, तभी जरूरियात तो हम पूरी करेंगे। अपनी जात की नशो नुमा तुम खुद करोगे, और उसका तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा पैदा करो और ज्यादा से ज्यादा दूसरे की जरूरियात के लिए देते चले जाओ। जात की नशो नुमा खुद करो, तुम्हारी तुम्हारे बच्चों की नशो नुमा हम करेंगे। यही अजीब हमारे मन, वो इंसेंटिव, वो जज्बा मुहर्रिका जो दास तो नहीं मिल सका था, जिसकी वजह से उसने कह दिया था, और ये मैं समझता हूँ उसकी दयानत का तकाजा जो उसने कह दिया, इतराज कर दिया इतने बड़े आदमी कि मैं नहीं ये कर सकता, और ये बातें था कि नहीं कर सकता। ये था वो ईमान जिसकी बुनियादों के ऊपर ये माशी निजाम इस्तवार हुआ था, ये था वो ईमान जिसकी बुनियाद की ऊपर का बदायश मिले हैं। और इस बात को जो कम मिला है, कम इसे बदार से अगर उसकी क्वांटिटी नापी जाए, और साथ वाला जो था बाल बच्चों वाला उसका ज्यादा मिला है। कम वाले ने ये नहीं किया कि फिर बाकी उम्र जो है वो कहे कि मैं तो दो घंटे काम करूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है सारा दिन जान मारता। फिर वो भी उसी तरह जान मारता था जिस तरह ये जान मारता था, क्योंकि इस जान मारने के युग में जो कुछ ज्यादा हो रहा था, जो ज्यादा से ज्यादा दूसरे को दिया जा रहा था, उससे इनकी अपनी बात की नशो नुमा होती। कुरान ने जो कहा है तो याद रखो, ज्यादा से ज्यादा जो दूसरों को देना है वो तस्वीरत नफ तुम्हारी उससे हो जाती है। इंटेग्रेशन ऑफ योर ओन सेल्फ, लफ्ज भी तस्वीर था अजीबा ने मैम सदार्थ से जो लफ्ज निकलता है, तो कहा कि ये है जगदा मोहरम, ये है जी आज 53 जहां से आज का वर्ष शुरू होता है। और ये ऐसा मसला था कि वो दूर जाने की जरूरत ही नहीं उसने रखी। किसी ने आयत 71 में पा लीजिए 71, आयत 70 में तो बात यहाँ से यूँ चली आ रही है कि वल्ला हो फलाता कौन सुनना या ताजा सा तुम या मन तुम मन जो रद्द इला अर्जर उमर इन अली साहब, अगर आपने घर के नक्शे के ऊपर एक निगाह दौड़ाई है, आज एक बच्चा पैदा होता है तुम्हारे यहाँ, जाहिर है जो वो कुछ कमाने के काबिल नहीं है, तो क्या तुम्हारा असूल ये है कि जो कमाएगा उसी को इतना ही वो ही मिलेगा, जो नहीं कमाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये बच्चा तो पहले भी नहीं मार देना चाहिए था, जैसे कमाई नहीं जाता। कहा क्या करते हो तुम, करते हो इनको जरूरत, घर वाले भूखा रहते हो उसके लिए दूध का इंतजाम करते, तुम्हारी अपनी जरूरियात सब कैसे कुछ तुम डाल लेते हो, जो कुछ नहीं कमा रहा है उसकी जरूरत सबसे पहले पूरी कर दो। कहा तो कहो ना वो सुन लाओ ना, तो साहब जो ठीक है जो मेहनत करेगा उसको उतना ही मिलेगा। ये परवरिश की जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर ले रखी है ना इस बच्चे की, तो सारी तवज्जोहात का मरकूज वो नुकता हो जाता ना, जिसकी परवरिश हमने करनी है, वो सवाल तो नहीं पैदा होता कि ये कमाता क्या होगा, कमाता कुछ नहीं। पैदा दरमियान की उम्र ऐसी आती है कि इसमें ठीक है, तुम बहुत कमाती हो, बहुत ज्यादा कमाती है, होता है ये कुछ भी। और फिर बुढ़ापे की उम्र आ जाती है, उसके बाद फिर कमाने की सब आई है, तो इसके बाद काम हो जाती है, तो फिर क्या होता है उस बूढ़े बाद के निकलने, उसकी जरूरियात पूरी करते हो, या फिर वो बूढ़े वालों की तरह से उसका धक्का दे देते हैं कि जाओ जाओ वहाँ जाके पूर हाउस में तुम बसर करो अपने। राजदार ने सालन क्या कहा था कि जितनी कमी आ गई है इनकी, इस कमी को पूरा करो। ये कमाने वाले अपराध के ऊपर दोनों जिम्मेदारियां आज होती हैं या नहीं, कि वो जो कमा के लाए पहले उस बच्चे की जिम्मेदारी पर उसकी पूरी करो जो कुछ नहीं कमा रहा, फिर उन बूढ़ों की जिम्मेदारी पूरी करो जो कम कमाने के काबिल हैं अब, और ये ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। जितनी ये जिम्मेदारियां बढ़ती हैं उतने ज्यादा काम करते हो या नहीं, अच्छा बात उसी को कहेंगे ना कि जो जिम्मेदारियों की नस्बत से ज्यादा मेहनत करे। रोज ये होता है कि साहब नौकरी को मैं करता हूँ उससे पूरा नहीं करता, घर का जिम्मेदारियां मेरी बढ़ गई हैं, इसलिए मैं आज शाम से भी जाके काम करता हूँ, मैंने एक पार्ट टाइम भी एक जॉब दे दिया हुआ है, करते हो ना ये ज्यादा से ज्यादा, क्या रोजगार मर रहा है आपका भी उसमें। यही टीम से मेरी जिम्मेदारियां जो है उनको पूरा करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, और उसमें से जो देखी तो है ना कानक काम खुद देते हो ज्यादा से ज्यादा दूसरे को देते हो। जिस बात की एक असलियत हो कि घर में बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और वो बाजार में दवाई खा रहा हो, सारी दुनिया उसको भगा जाती है, रबूबियत का तकाजा ये तो नहीं है, है ना। तुम अपने यहाँ ये यानी आप देखिए कि कहाँ से बात को शुरू की है उसने, तो ये नक्शा है ना तुम्हारे यहाँ का, वो कहता ये है कि ये नक्शा जो एक घर की चार दीवारी के अंदर है, इन दीवारों से जरा इधर और इधर से नीचे गिरा दीजिए, जरा सा कुशादा कर दीजिए। ये जिसे उसने दुर कहा है, जिसका भी तर्जुमा हमने नेकी कहा है, लाखों दुर्गा हम कहीं वजह केवल नशरे केवल मगरब, देर यही नहीं है, दूर के मैंने कुशाद की है, वो कहता अगर हमें कहूँ तो कुशादा करो, और यही जब दीवारें तुम गिरा दोगे इसका नाम आसरा हो जाएगा। कहा यहाँ तक तो तुम इस असूल को असूल पर अमल पीरा रहते हो, ये माशरे के अंदर इस असूल को क्यों नहीं लगाते, और अगली आयत अजीजा ने मन कुरान है वल्ला है सदन अदा तुम अदादा जिनसे भी प्रसाद रिजक की सलाहियतों में फर्क है, किसी को ज्यादा हासिल है किसी को कम हासिल है, बच्चे में तो होती ही नहीं है अभी, देखा पहली आज के साथ क्या रब पा रहा है। वल्ला है सब अलादा तुम अलादा जिनसे, बस ये है ईमान, ये जो सलाहियतें हैं जिनका तुम फर्क देख रहे हो, वल्लाह ये खुदासी अदा कर रहे हैं साहब ये। और आगे फिर वो बात कही है, कहने का अंदाज क्या है, कहने के ये सब कुछ तुमने समझ लिया, अपने यहाँ करते भी ये हो तुम घर के अंदर, ये भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये जो सलाहियतें हैं ये इक्तसाद रिज्क की बुनियादी तौर पर ये तुम्हारी में खुदा की दी हुई है। और आगे समन्ना जी ने बुद्ध लू दराज भी रिप्त हिम अदा ना मला तक ऐबान हूँ कहन सी है सवार, कहता कि फिर ये क्यों नहीं तुम ये ऐसा, ये क्यों नहीं करते कि जिनको ज्यादा सलाहियत हासिल है इक्तसाद रिज्क की पैदा करने की, वो जो ज्यादा जरूरत है ये जिसे हम फाजला कहते हैं बुनियादी मादा, तो उसका भी ये तेज आज मानी है ना, जहाँ से ये फजला तुम है, ये जो उसमें से फाजला तुम्हारे पास आ गया, ज्यादा जरूरत आ गया है, तुम इसे अपने माता काम करने वालों की तरफ लौटा नहीं देते। यहाँ एक लहजा हीना ने मन बैराज दी कुरान है, ये जो चीज है कि जो तुमसे ज्यादा जरूरत है इस बिना पर कि तुम्हें खुदा ने जायद सलाहियत दी है कमाने की, इसकी वजह से जो ज्यादा जरूरत तुम्हारे पास आया है, अब हमारे यहाँ तसव्वुर ये होगा कि ये दूसरे को देना शराब है, बख्शिश है। अरबी के जानने में तो कहते तो अतिया ही कह देते और कुछ नहीं। वो कहता है बैराग्य, बैराग्य के माने होता है जिसकी कोई चीज है उसको जाके दे देना, लौटा देना। जो तुम्हारी वो बनारस मेरे पास रखी हुई थी तुझे ले लो नहीं आती, बैराग्य ला रहा है ये खुदा का कलाम जो तुम्हारे माता काम करती है। यही है ना इंजीनियर में लेबर में कर, वो कहता है कि ये जो है तुम्हारे जायद कैपेसिटी से तुम इतना ज्यादा हासिल करते तो तुम उनको लौटा तो नहीं देते, तुम्हारा नहीं है ये तो सब उनका है, ये सब करता था तुम्हारा कुरानी में बैठे बैठाते। कहता ये है जज्बा तुम्हारे दिल में सहन की ये सदायन के साथ ये इस तरह से हमर ये सब बराबर हो गए। अच्छा ये है जज्बा तुम्हारे अंदर तो ये तो मेरा था और ये तो जितना ही है जो ये समाते हैं, इसलिए ये मैं अगर इनको दे दूं तो ये तो हम बराबर हो गए। सुनिए अजीवान नाम, पहले वो आयत के चार लफ्ज हमने देख लिए ना, तो जो कुछ भी नेमत है खुदा की जो तुम्हारे पास वो खुदा की अता करना है। कहता ये तो तसव्वुर के ये जायद जो है हम इनको दे दें जो काम कमा रहे हैं जिन्हें कम इस्तेदाद या सलाहियत हासिल है। कहता ये इसलिए कि असा दो नेमा तल्ला है जब यहाँ, क्या तुम इस बात से फिर इंकार करते हो और इस बात को इंकार करते हो कि जो मेहनत हासिल है तुम्हें जो तुम्हारी या खुदा की तरफ से नहीं है, कहां का फिर टुकड़ा है तुम्हारा उस बात से है ना। ये जो तुम्हारे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि इस तरह जायद देने से तो हम जस्ता हो जाएंगे मिसाजी हो जाएंगे, तो इससे मैंने ये हुआ कि जो चीज खुदा की तरफ से तुम्हें मिली हुई है उसे भी तुम अपनी मर्जियों पर सदर करते हो। क्या ये चीज जो है इन नियमतों का खुदा की तरफ से होने से इंकार करती हूँ, बल्कि इंकार की बजाय भी यह है ये है कैफियत तुम्हारी, इसलिए ये तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा हुआ ना। जान ज्यादा जरूरत क्यों ले दी, कहा कि इसके तुम्हारे ये है कि तुम्हारा ये जो था पहला बुनियादी ईमान समन अल्लाह ये खुदा की तरफ से है, इससे इंकार कर रहे हो तुम। यहाँ तो ये बात इससे मुस्बत कही पुराने करीम में, इसीलिए माल के मुतालिक जहाँ वसायल रिजत के मुतालिक उसने ये चीज कही है कि वो खुदा से ही दिए हुए हैं, तुम्हारी अपनी जाती मिल्कियत नहीं हो सकते। ये माल और दौलत के मुतालिक भी उसने यही चीज कही है, इसलिए तो वो जो चीजें हैं वसायल रिजत और उसने से रिजत पैदा करने की सलाहियत जो दी हुई है जिसको मेहनत करके उसने पुकारा है वो तो खामी मरना जब हो जाएगा तो उसमें से जो पैदावार होगी उसे भी तो ऐसा में नल्ला ही कहेंगे। वो कहता ये है आम जब से नून और रहमत अरबे का, ये तो दूसरी बात होगी, नहने कसम न बैना हूँ मईसों का हूँ खुद हजार से दुनिया बरसाना दादा हूँ सौ का बादन बरा घर मैं कसुदा दादा हूँ दादम को खरीदा व रहमत रबे का खैर मजमा हूँ। कहता ये जो फर्क है सलाहियतों का ये सिर्फ इसलिए है कि माशरे में तकसीम अमल तकसीम कार का तकाजा ये है कि मुख्तलिफ किस्म के काम मुख्तलिफ लोग करें, मुख्तलिफ सलाहियतों वाले मुख्तलिफ किस्म के काम करें, ये तो तकसीम कार के लिए है। ऐसा कहता ये जो फर्क है सलाहियतों का ये सिर्फ इसलिए है कि माशरे में तकसीम अमल तकसीम कार का तकाजा ये है कि मुख्तलिफ किस्म के काम मुख्तलिफ लोग करें, मुख्तलिफ सलाहियतों वाले मुख्तलिफ किस्म के काम करें, ये तो तकसीम कार के लिए है। ऐसा और तुम्हारी तस्वीर ये है कि तुम मालिक मान बैठते हो ये तसव्वुर करके जाने बातों में अपने कि ये सब हमारी मिल्कियत है, जो हमें ये सलाहियत ज्यादा मिल गई है ये भी हमारी मिल्कियत है, इसका नाकद भी हमारा होना चाहिए। कहने लगे सिर्फ इतनी सी चीज है रहमत रबे का खैरुन मिन्ना यजमा हूँ, तुम जो इस ख्याल की बुनियाद पर कि हमें जो सलाहियत ज्यादा हासिल है उसके नाकल के हम मालिक है, ज्यादा जरूरत के जो अपने लिए जमा करके अलग रख सकते हो, याद रखो रहमत रबे का है खुदा की रहमत है जो उसकी तरफ से इस तरह से सामान अधिक मिलता है, उससे कहीं बेहतर है जो तुम अपने लिए जीव बना करके रखते हो। इससे तो आग लगेगी, जल जाएगा, सलाब आ जाएगा, बह जाएगा, तो लूट के ले जाएगा। और अगर ये जिम्मेदारी निजाम के ऊपर होगी कि तुम्हारी सब की जरूरियात जिंदगी वो पूरा करेगा, न सलाम बहा के ले जाएगा, न आग जला जाएगी, न लूट के ले जाएगा, ये है रहमत रब। क्यों ज्यादा जरूरत को जमा करके रखती हूँ? अब उसमें उसके बरक्स जो नजरिया है वो जिस पर निजाम सरमायादारी की सारी बुनियाद है, वो नजरिया वो सामने लाते हैं। उसमें ये चीज है ना, आपके हर फर्द ये कहता है, वो जिसे कहते हैं कि मिल्कियत का जज्बा जो है इंसान के अंदर होता है, वो हर चीज को मेरी कहता है। और इसकी बुनियाद ये है, वो कहता ये है कि जो कुछ मुझे ज्यादा हासिल हो रहा है कि मेरी हुनरमंदी का नतीजा है, ये है ना बुनियाद, जिसे आप सरमायादारी या कैपिटलिज्म का निजाम कहते हैं। इसकी बुनियाद इससे होती है कि वो हर फर्द ये कहता है कि जो कुछ मैं कमाता हूँ ये मेरी हुनरमंदी का नतीजा है, इसलिए ये मेरी मिल्कियत है, किसी पे हक हासिल नहीं है कि उसमें किसी तरह से इंटरफियर करे। वो जो नेशनल शोर है निजाम सरमायादारी में, मोर राइट ऑफ इंटरफियरेंस, वो है बुनियाद कि किसी पे हक हासिल नहीं है कि उसमें मुदाखलत करे, क्योंकि ये मेरी मेहनत का नतीजा है, जो कुछ मैंने कमाया है, जो कुछ मुझे हासिल है। ये बिल्कुल मुतजाद हो गई इस ईमान से जो कुरान ने कहा था मैं अल्लाह, इसमें मिसाल ये देकर बयान करके निजाम सरमायादारी का नुमाइंदा उसके नजदीक कानून है। वो तो गर्बिन लखला है, आज तक 28,000 28 बता इतना कानून है ताना मिलता हूँ। क्या बात है कुरान की अजीजा ने मन जिन कहे मूसा कहे कि कितनी अजीम चीज का जो बजाय तो जो नजर आता है कि बताया गया था कि कहो मूसा में से था। तो पहले कहता चला आ रहा है कि बनी इसराइल के ऊपर एक तो वो आजाद था जो एक गैर कौम ने फिरौन ने उनके ऊपर आज कर रखा था, उनके अपनी नातीनियत के पंजे में जकड़ रखा था, उसके बाद का शिकंजा सलादी उनके पीने पे था, वो तो दूसरी कौम थी। ये कौन से इस किस्म की जो है सवाल इसमें ये नहीं होता कि अपनी कौन से है दूसरी कौन से, एक अपनी कौन के अंदर के सरमायादार के अंदर तो उसके भी ज्यादा सोना शान होते हैं अपनी कौन का फर्क था। जो कहा तो इतना कुछ उसको हासिल था कि उसके बड़े खजाने थे, उन खजाने को तो इतने बड़े जमाने में तो भात नहीं होती थी ना, वो दौलत जो थी नोट नहीं होते थे, चेक तो नहीं होता था, तो 5 लाख का भी हो तो इतना सा पूर्जा, वो तो अगर 1,00,000 रुपया उठाना पड़े तो उसके लिए कई कुरी दरकार होते हैं। इसलिए कहा कि वो इतनी दौलत थी कि उसको उठाने के लिए भी इतने लोग चाहिए थे। और उसकी बुनियाद के ऊपर ला तसरह इल्लल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, वो बहुत बड़ा बन रहा था, फूला हुआ नहीं समाता था। उसकी बुनियाद इसे कहा जाता था जो ईमान रखने वाले थे कि ये न कर, और कितनी अजीब चीज कही कुरान ने, जब कहे कि मैं आता करना हो खुद दारुल आखिरत जलातम था नतीजा का मैंने दिली है। बात यही की रूह से बात कहने वाले उससे कहते थे कि हम तुमसे ये नहीं कहते हैं कि ये दुनियावी जिंदगी में बिगड़ी पहन दे और जैसी रोटी खा दे और ये सारा छोड़ दे और त्याग दे, ये जोग या संन्यास बिल्कुल नहीं, दुनिया की जिंदगी में भी अपने हिस्से को खड़ा नहीं इसमें कार्य भूक गाय भी हो सब कुछ, लेकिन जब तक सीमा आता कल्ला हो जो कुछ खुदा ने तुझे दिया है उसने आखरत की फिक्र भी अपने साथ रखी, वही जात की नशो नमाज उसे कहा गया है। उसका तरीका वह आसम कना आतमंदा इलेका, ये आतमंदा ये खुदा ने ये जो दूसरों के यहाँ कमियाँ हैं और तुम्हें ये ज्यादा दे के उसको इस तरह से ज्यादा दिया हुआ है और ये कमी पूरी की, ये खुदा की तय करता है। ये पूरा उसने तुम्हारे साथ में किया है जो बाकियों के मुकाबले में तुम्हें ये जायद दिया है, जिसके पास खाने के लिए रिजल्ट कम है उसे तू उसी एतबार से लिए चलेगा। खुदा तुम्हारे साथ ये करता है तू उनके साथ ये करता है। वला तबगुल फसाद फिल अर्ज, और मुल्क के अंदर फसाद बरपाना कर। अब देखिए दस फसाद जहाँ आया है, ये जितनी भी कैपिटलिस्ट होते हैं उनको कभी भी आपने देखा होगा कि लाख लोग बाहर आ गए हैं या बम मार रहे हैं या कितना पता कर रहे हैं, कभी ये करते नहीं। ये तो ऐसे वक्त में और ज्यादा दिलों में घुस जाते हैं अंदर। तो फसाद ये तो है नहीं, तो फसाद ना पैदा कर। ये जो है रिजल्ट की गलत तस्वीर जो से तबकात पैदा होते हैं यही तो फसाद है, इससे मैंने नामदारियां होती हैं। फसाद न पैदा कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकीम, खुदा के निजाम में ये फसाद पैदा करने वाले पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखे जाते। ये था जो ये लोग उससे कहते थे। आज कुरान ने जो जहनीत बयान की है या नजरिया बयान किया है जिससे ये सारी निजाम सरमायादारी की इमारत इस सवार होती, ये भी प्यारी लग है। उसने जवाब दिया काला इन्ना इन की तो अला इन इन भी उसने कहा कि ये सब जो कुछ मुझे मिला है मेरी अपनी हुनरमंदी का नतीजा है, मेरे मेरा है ना इसका मालिक। तो जिस तरह से जीता है उसको फर्क करूँ, जमा रखूँ, किसी को दूँ ना, जो तुम कौन होते हो बताने वाले, ये है अजीजा ने मान वो नजरिए। हिन्ना न ऊँची तो ही अला इन मिन इंदी, खैर उनके लिए तो वह चलिए, खैर उसका इतना ही नकल किया है। बात उसके बाद उसके नतीजे भी कही है अलम याद अहला अबले ही मन करूर मन हुआ अशद्ध मन हो कुतंग अकबर जना वला जूसा लो हम बनी जो है मिल मुद्र भूल। कहा उसे ये पता नहीं है कि इसको देश पर इस निजाम की हामिल पहने कि जो इससे कहीं ज्यादा जमा करके रखा करती थी। क्या टिप्पणी वही जमा जमाया कुरान का अक्षर जमा सब्य चीजों तुम अक्षर जमा टूटी बड़ी थी और इन लोगों ने भी जमा कर रखा था, टूटे नहीं कितना था इसे पता नहीं है। इसी फसाद की वजह से किस तरह से कदा होकर रह जाएंगे पहले, ये उसके मुकाबले में है कैसे। ये वो जहमियत थी जो कुरान ने एक तरफ निजाम सरमायादारी के मुतल्लिक बयान किया, इसे इधर से तो इसे खत्म कर दिया या ना दे तुम दिन नियमत इंसान लंबा वो कटा। दूसरी तरफ ये जो निजाम कायम करना था अपना कि हर शख्स अपनी सलाहियत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा वो काम करे, और ये जो चीज है ना तू ही तो कैबिन की ही चीज है, ये नहीं है कि उसमें से उसे दिया जाए, बल्कि कुरान ने तो ये कहा है कि ये उसका सवाल ही नहीं है, ये सवाल हमारा है, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये निजाम खुदाबंदी की जिम्मेदारी होगी कि ये उसकी और उसके बच्चों की जरूरियात जिंदगी पूरा करता रहे। यानी आपने देखा है कि कुरान इन दो चार आयतों के अंदर किस तरह से बात वाजे कर दिया कि निजाम सरमायादारी की तो जड़ काम के रखती है। वो जहनीयत जिसमें वो कहने वाला है कि जो कुछ मुझे मिला है मेरी हुनरमंदी का नतीजा है, और इधर से ये चीज तो इनको जो जज्बा मुहर्रिका नहीं मिलता कि कोई शख्स जान मार का काम करेगा, जिसे पता है कि इसमें से मुझे समझदार मिलता है ज्यादा जो फासला है दूसरों के पास चले जाना है, वो क्यों ऐसा करे, उस क्यों का जवाब ये दिया कुरान ने। ये है जिसे ये कहते हैं कि साहब ये तो फिर आप सोच के ऊपर बात कर रहे हैं, मैंने अब किया है अभी आपसे, तो ये सारी बातें सोच में है। कारून ने जो कहा है या कारून जिनकी जिस जिस तबके या निजाम की नुमाइंदगी कर रहा है उनका ईमान है ना कि हमें जो कुछ मिला है अला इनमें इनकी मिलता है, हमारी हुनरमंदी का नतीजा है। आज भी आज जब सुनते हैं कि जो कैपिटलिज्म के मदाफियत में या उसके हक में जो भी वहां से सवाल आए तो किताबें मिलती हैं, आप उनमें पढ़िए, बुनियाद इससे होती है। नो राइट ऑफ इंटरफियरेंस जो उनके यहाँ का मसूदा है उसकी बुनियाद इस पे है। तो ये हर शख्स उसकी अपनी उम्र मंदी के लिए उसे मिलता है, किसी को क्या खाना अकेले से तीन दो या दे दो, ये उनका ही नाम है। दूसरी तरफ उनका ये ही नाम है। इंसान की जिंदगी ये तभी जिंदगी है, उसके बाद न खुदा न उसके कवानीन न उसकी तरफ से कोई वही न ये चीज से ये खुदा की अदा करना है। ये इनका ही नाम है तो खुदा की अदा करना नहीं, खुदा की अदा करना नहीं है तो खुद तो इसकी अपनी ही, जब उसकी अपनी है तो तुम कौन हो तो इंटरफियर करने वाले। तो कहते हैं स्टेट को भी हक हासिल है, स्टेट का तो मैंने तजिया एनालिसिस करके रख दिया है, किसी भी कन्वेंशन में मेरा खिताब उसे जरूर पढ़िएगा, वो बड़ा ही अहम खिताब है। कर लिया मैंने पर मैंने उसमें बताया ये है कि खुदा का इनकार करने के बाद उनको जरूरत थी कि कोई ऐसा खुदा या महबूद बनाया जाए जिसके नाम से भी कवानीन नाफिज किए जाए, लोग वरना मानेंगे नहीं। इन्होंने वाहना में एक तस्वीर दिया है स्टेट का, वो स्टेट को भी एग्जिस्ट नहीं करती, यही अरबाद इकदार ही का नाम होता है। ये दूसरी तरफ जो इन्होंने ये कहा कि हमें हक हासिल है कि जो कुछ भी एक शख्स अपनी मेहनत से कमाता है उसमें वो जो जितना कुछ है वो स्टेट की मिल्कियत में जाता है। उसने कहा कि वो न तो ये जमीन स्टेट ने पैदा की थी देश की मिल्कियत में चली जाए, ना इन अपराध के लिए सलाहियत स्टेट में दी हुई है देश के ऊपर भी उसका हक हासिल हो। ये एक वाहना क्यों तुम कहते खुदा क्यों नहीं कहते उसको? आप कहेंगे फर्क क्या है, बड़ा फर्क क्या जीवा ने मन स्टेट कहने में आखिर में जब आप जाएंगे तो चंद और ज्यादा इश्तेदार आपके यहाँ आएंगे ना, यहाँ बैठे हुए कानून बनाते हैं। जब खुदा कहेंगे तो वो भी बीच में से निकल जाएंगे जीवा ने मन। ईमान तो तीनों जगह अजीजा ने मन आया, निजाम सरमायादारी में भी बुनियाद ईमान तो हुई और वो बुनियाद हुई कि इनमें न होती तो हुआ अला इनमें हिंदी, ये उसका ईमान निजाम सरमायादारी का ईमान। इनका भी ये ईमान है कि वही मुस्तकिल अखबार खुदा उसके कवानीन कोई क्या नहीं है, इंसान ही है, ये भी ईमान है। उस ईमान का वो नतीजा तो वो फसाद किसी नाम का ये नतीजा कि तस्वीर बड़ा सही है जिस पे आप रहते हैं उस पर अमल में लाने के लिए कोई गड्ढा मेरेका नहीं मिल रहा, तो वो नजरिया से अभी जो अमल में न आ सके आ ही नहीं सके, आज सकेगा ही नहीं। बैठे मुतमिन होकर सोशलिज्म को ही सोशलिज्म जैसा नाम अर्ज किया है, ये निजाम सरमायादारी का दूसरा नाम है। निजाम सरमायादारी में आज भी आपके यहाँ जो चीज आई है ये नस्लन कारखाने ये जमीने ये अफराद की मिलकियत थी ना, जिसको हमने नेशनलाइज किया है इन अफराद के स्कीम से किसी और की तहजीब में दी है जिसको हम स्टेट कहते हैं। अगर मैं आपको देखेंगे तो ये इंसानों ही का कुछ नजरिया होगा ना, इसलिए कि इंसानों से बढ़कर तो ये कोई और मानते ही नहीं किसी हसीियत, तो ये तो इंसानों में रहेगा। और अजीजा ने मान फसाद फसा दिया हाँ, उसका बरका करने वाला एक इंसान है, वो इंसानों का एक ग्रुप है। यहाँ तो रहा है कि आप तो एक फर्द आ गए तो कुछ पैंट उठा के लूट के ले जाए वो भी है, हाई रोड के ऊपर का डाकियों का एक ग्रोह आ गया तो वो भी उनका ये खेल जाए, इसलिए हो जाएगा कि हम बहुत ठीक है कुरान में कैंडल मुझे नहीं था डाकियों का ग्रोह। ये ईमान है अभी जाने मान जिसकी बुनियाद के ऊपर न फर्द को ये हक रहता है न अपराध के ग्रोह को कोई हक रहता है, वो इनके ऊपर भी वो खुदा होता है उनके ऊपर भी वो खुदा होता है। बालसाहब दीगर इनका भी ये ईमान होता है उनका भी होता है, और उसमें तो इन और उनमें फर्क ही कोई नहीं होता, अमरो उन पूरा बैना उन होता है। इस चीज पर ईमान रखने वाले बाहमी मुशावरों के लिए इंतजाम करते हैं कि कैसे किया जाए। इनमें से कोई एक विरोध भी ऐसा नहीं होता जिस पर दूसरे के ऊपर किसी किस्म के इस्तेहसास या एक्सप्लॉयटेशन का हक आदम सामान कुछ भी क्यों न रख दिया जाए। ये निजाम है जिसको आप निजाम खुदाबंदी या मुमलकत इस्लामिया या खिलाफत अला मिनहाज रसालत कहेंगे, ये निजाम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के साथियों ने मुतकल्ल किया था इस ईमान के ऊपर तो माला में तुम देने मतन था निबंधा आपने गौर फरमाया जीवा ने मन कि किसी निदान के लिए ईमान की कितनी जरूरत है। बुनियादी ईमान बनता जो लादीन का तो अपने आप को उनका भी ईमान होता है, लादीनी का ईमान होता है, कम्युनिस्ट का भी ईमान होता है, कैपिटलिस्ट का भी ईमान होता है, कुरान को मानने वाले अब्दुलमोमिन का भी ईमान होता है। ईमान होता जिस चीज के ऊपर है इसमें है सारा खर्च। इसलिए जगह जो चाहे के साथ जब तुम ईमान या सेठ की बात करोगे तो इसमें हम नहीं आएंगे, इसलिए तो हम नहीं मानते इसको। कहा गलत कहते तुम भी अपनी बात सेठ से कर रहे हो, ये कहना तो वही कोई नहीं है तुम्हारा सेठ है, ये कहना तो वही है हमारा सेठ, ये कहना तो ये मेरी हिम्मतबंदी का नतीजा है, खजाने सरमायादारी की बुनियादी इसका सेठ है। तुम्हारा ये कहना तो फर्द का नहीं है, ये स्टेट का नतीजा दे जाती है तुम्हारा सेठ है। हमारा सेठ ये है कि इसमें इंसानों में किसी इंसान की ये मिल्कियत होता ही नहीं है, इसलिए किसी इंसान या इंसानों के ग्रोह को हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह से इंटरफियर करे। ये हक उनसे डाला जा रहा है और वो इसलिए उसके ऊपर हमारा ईमान है कि जो अता करता वास्तविक इसका है, स्टेट अता नहीं कर सकती किसी फर्द को उसकी सलाहियत है या जमीन नहीं बना सकती। इनसे कहना पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है साथ इस जमीन की अब कैपेसिटी कम कर रही हो गई है, इनसे तो ये भी बहुत अच्छा साहब किसी किस्म का तुर्रा घर के साथ बिना लीजिए साहब, उसे तो तुम कैसे देखो स्टेट की मिलती है या फर्द की मिलती है, खुदा की बनाएंगे जमीन के ऊपर नहीं है कैसे। ये हमारा ईमान कुरान के मानने वाले का ईमान, और जब ये ईमान है तो जो कुछ मेरी सलाहियतें हैं वो भी मेरी अपनी नहीं है, जो भी उसकी अदा करता हूं जिन चीजों पर मैंने इन सलाहियतों को इस्तेमाल करके उसमें से रेत पैदा करना है वो भी मेरी अपनी नहीं है, वो भी खुदा की अदा करता हूं। बना ले तुम मिलने मत इंसान बनना कुरान कहता है ये गलत निजाम इस दावे को इस नजरिए को झुटलाने से पैदा होते हैं। ये भी कहता है कि क्या ये लोग खुदा की नियमत को झुटलाते इनकार करते या उसको जो ये युद्ध पे अड़ जाते हैं तो जो हमारा है जो उसका नहीं है। वो कहता है ये है बुनियादी नुकता कि जिसे अजीजा ने मान आज कहेंगे कुरान का मासी निजाम जिसमानी मनलकत का निजाम उसकी बुनियाद उस ईमान पे होगी कि ये सारी चीजें जितनी भी है फर्द की सलाहियतें हों या वसायल पैदावार हों ये न फर्द की मिल्कियत न अफराद की मिल्कियत न इंसानों की मिल्कियत का मन अल्लाह खुदा की मिल्कियत। और जब जिसकी मिल्कियत मान ली जाए फिर उसको तो हक होता है ना कि अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ करे और उसके इस्तेमाल के लिए कायदे और कानून भी मुकर्रर करे। हमारा ईमान है कि ये उसकी मिल्कियत है और उसने कायदे और कानून मुकर्रर किए उस अर्ज के इस्तेमाल के लिए भी। मुझे भी कहा कि तुम अपनी इन सलाहियतों की बिल्कुल किस तरह से तुम इन सलाहियतों को इस्तेमाल करो, मुझ पर भी ये कानून लागू होता क्योंकि ये मेरी नहीं है, इसे हम यही का कानून कहते हैं। इस पर हमारा ईमान है, तुम्हारा ईमान है ना स्टेट के कानून का, जरा ऐलान कर दीजिए ना तो मैं ना स्टेट को मानता हूँ ना इसके कानून को मानता हूँ, हमारा ये ईमान है। और वो जो जहां आके मार्क आजीज रह गया है जहां से आगे कदम ले जाता है कुरान को कहता है मैं देता हूं जज्बा मोहरे का, और वो है ये ईमान के बनाने को मिलने मतलब भाव अजीबा ने मन हर चीजें जो कुरान ने कदम कदम से कहा है कि गौर और फिक्र करो उस कुरान के अंदर, ये आज चार लफ्जों की है। कौन है हमने से जिसने ये आयत नहीं पढ़ी, कितनी बार ये आयत नहीं दोहराई जाती, आपने देखा कि जरा खड़े होकर इस पर गौर किया तो कितना एक अहम मुश्किल तरीन मसला जो इंसानियत का है जो चार लफ्जों के अंदर हल हो जाता है। किस तरह एक ही मुस्बत ईमान में जो गलत ईमानों की जड़ें कैसे काट के रख दी, दोनों तरफ मिला ने सरमायादारी की भी जड़ें काटी। ये जो नया आपके यहाँ का इस तरह की सोशलिज्म या कम्युनिज्म का निजाम चला आ रहा है, इसकी भी जड़ें काट दी। जड़ें क्या काटी? कहा यह कि ना वो मसले का हल दे सकता है ना जो मसले का हल दे सकता है। उनके यहाँ बुनियादी तौर पर वो नजरिया ही बातें हैं। इनके यहाँ भी ये जो चीज जिसके नजरिए के ऊपर ये पहुंचने को ऐसा होना चाहिए, इनके पास इसको अमल करने के लिए कोई जज्बा ही है नहीं। कुरान ने जो कहा है ना कि ये मुकद्दस है गुंडागी का जो ये लोग करते चले आ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि इसके माने तस्दीक करने वाला नहीं है, तो ये इनको सच्चा कहता है। मुकद्दस के माने इतना सच करके दिखाने वाला। कुरान में ये है, कुरान की खुशियत के वो एक दावा या नजरिया देता है और फिर उसको सच करके दिखा देने के तरीके भी बताता है। फिर कहीं तो जहाँ मार्क आदि होकर रह गया था, ये जहाँ आता है वहाँ आके बताता है। तो ये है उसका तरीका। और उसको जैसा मैंने अर्ज किया है, बुनियाद सारी ईमान पर है। अब आपने सोचा है कि अल्लाह के ईमान के माने क्या है? कभी हमने इससे गौर किया कि हमारी अमली जिंदगी के साथ इसका ताल्लुक क्या है? कभी इससे गौर किया कि हम ईमान अल्लाह से मानते हैं, वो नहीं मानता फर्क क्या है? हम तो इतना ही जानते हैं ना कि मुसलमान है वो काफिर है, वो फर्क है। अरे ये फर्क क्या है ये बताओ कि इससे तुम्हारी जिंदगी पर फर्क क्या पड़ता है? इंफरादी जिंदगी पर, इज्तमाही जिंदगी पर, निजाम पर, निजाम मन्नत पर। लेकिन हम तो ये आयतें पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आगे गुजर जाते हैं, बस किया कर दो। तो कोई मेहनत नहीं कि तुम्हें हासिल हो गई अल्लाह की तरफ से होती है, बात खत्म हो गई। आगे कुछ नहीं। आपने देखा जीवन है मन कि चार चार दर्शों की आयतें आयतों के खींचते तो इस तरह से एक दूर निगाम की बुनियाद बनते हैं कुरान के नीचे। ये है ईमान, हमें अल्लाह जो है अल्लाह का ईमान। इनकी भी एक असियत है, जरा पूछो तुमने इजा कसा कर दे रहा है तुम इजा फरी तुम मिल तुम गर्व देगी। असियत ये है कि जब गरीबी आती है, नवारी आती है, मुसीबत आती है, फिर तो या अल्लाह आते उस वक्त ये होता है, फिर अल्लाह याद आता है। आपने देखा है कि गलत मुकाम में भी मुझे मदद का ध्यान है। जो कहते हैं ना कसा है वो एक हदीस का जो गलत मफहूम उन्होंने पैदा कर दिया कि अल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम गरीबों में पैदा हुआ और आखिर में फिर गरीबों में ही फिर और करके आएगा। क्या गलत मफहूम है! अरबी जुबान से ना बात की, अरबी जुबान में गरीब मुखरिफ को कहते ही नहीं। गरीब को तो मैंने होता जो अनोखा है बाकियों से, तो कहा ये निजाम अनोखा है बाकी निजामों से। आज भी ये अनोखा है, जब दोबारा भी तुम इसको काम करोगे बाकी निजामों से अनोखा निजाम होगा। किसी के साथ इसकी मुकाबले तो मुकामत नहीं हो सकती। ये गरीब गरीब के मानो अनोखा होना है। कहा नगर की दुनिया के अंदर की तुम्हारी ये तस्वीर हो जाती है, लोग इसे नहीं मानते। लेकिन जब मुसीबत बढ़ती है तो फिर देखते कैसे रहते, और जब फिर उसके बाद मिल जाता है रफा हो जाती है, चीज गलत आ जाती है, गलत आ जाती है। फिर उसके बाद जो भूल जाते हैं कि इसमें खुदा का भी तो दिखता है। शरीर को मुमकिन जो रखते हैं दूसरे तुरंत जाए सिर्फ कहा एक बस जा गया, वक्त भागा जा रहा है और अल्फाज मेरा दामन फटा रहे हैं। ठीक है, हम क्यों भाई जिंदगी में मैंने दी है तो हम तो आएंगे। तुम फिर अपने रब के साथ सिर्फ करती है दुनिया प्यार सिर्फ है जो ये करते हैं। पैसा सिर्फ ये है ये लगत करूँ देना आता ना हिंद जो कुछ खुदा ने जो दिए थे उससे कहते इनकार करते हैं कि ये खुदा ने नहीं दिया हुआ है, ये मेरी मिलती है। जो उसने दिया था तो फिर तो मैंने खुदा को रखना होता है, इनकार करना होता है। जो मैं आता मैं हूं वो है ना सन मंदा, ये है ना खुदा की ईमान का ही ये है तो माना जाए हमेशा तक खुदा की अतिया है। मेरी सलाहियत का ये बताए नहीं। और उसके बाद जब जो मिला तुम्हें मुसीबत दूर ही तो फिर तुम उसके साथ शुरू करने लगे। अभी ये जरूरत तुम्हारी नहीं हुई है कि खुले बनने के पास से इनकार ही कर दो। मुसलमान बनते रहना तो जरूरी है ना, सिर्फ के साथ ही मानते रहे उसकी नमाजी पढ़ रहे हैं और फिर भी ये रहे तो ये जो कुछ मुझे मिला है क्या आदमी ने मिली ये मेरी अपनी उम्र मारी का नतीजा ये व्यक्ति जो मैं आता नाम ताकि तुम सबके दबा के छिपा कर रखते थे आता ना ये हमने दिया ठीक है। उसने जानते हम जानते हैं लेकिन कहते हैं पहले ताकत है ये सब तरह खत्म रखता है राजे आगे में है इससे कुछ फायदे हैं हासिल कर दीजिए ऐसा कहा देर नहीं लगेगी बहुत जल्द कुछ मुलायम के मुताबिक तुम्हारे सामने आ जाएंगे इसका क्या नतीजा हुआ ऐसा कहा ये है फिर तो दुनिया में नहीं ये चीज को नहीं है कि ये जो कुछ मुझे हासिल हो रहा है आपका ना हिंदी नहीं है उसका दिया हुआ नहीं बल्कि ये मेरी उम्र में भी प्रजा में मिला ये सिर्फ है अभी मैंने नहीं मोर की दुनिया में तो जो गिरती होता है उसके बाद तो मानते भी रहते हैं अमरनाथ तो नहीं सकेंगे अमरनाथ जनता गिर जाते ना हूं तो मेरे दाखल हम तो दिल पाए माना अल्लाह की ईमान है दर्जा तो कुछ एक तो फिर कहा जाएगा इस कला की वजह से हम बोलते हैं नरम जिसमें हम कहते हैं क्योंकि वो रूस वाले में हो रहे हैं वाले में स्पेशलिस्ट जो है उन्होंने तो इंकार भी कर दिया इस बात का ठीक है और अगर बहन बहन है
Thank you. Thank you.